नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी के बाद हवाई और स्वास्थ्य सहित वैश्विक सेवाएं धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं। भारतीय वित्तीय और भुगतान प्रणालियां काफी हद तक इससे अप्रभावित रहीं। भारत ने भूटान के साथ घनिष्ठ मित्रता संबंधों और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी झड़पों के बाद कर्फ्यू लगाया गया और सैन्य बलों की तैनाती की गई। मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा हुई। श्रीलंका में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया और स्वीडिश ओपन टेनिस में स्पेन के राफेल नडाल आज सिंगल सेमीफाइनल में क्रोएशियाई ड्यूओ एडियोकोविच से खेलेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहतनाज। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में कल हुए बड़े स्तर पर गड़बड़ी के बाद दुनिया भर में हवाई और स्वास्थ्य सहित वैश्विक सेवाएं धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं। दुनिया भर में लाखों लोगों पर इसका असर पड़ा। अमरीकी साइबर सुरक्षा कंपनी क्राउड स्ट्राइक ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया था। इस सॉफ्टवेयर में खामी आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम पर असर पड़ा। इससे दुनिया भर की बैंकिंग सेवा, अस्पताल और हवाई संचालन प्रभावित हुआ। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने कहा कि ग्राहकों को तकनीकी जानकारी मुहैया कराने और ऑनलाइन सुरक्षा के लिए क्राउड स्ट्राइक और उद्योग जगत के संपर्क में हैं। अमरीकी साइबर सुरक्षा कंपनी क्राउड स्ट्राइक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि इस गड़बड़ी को दूर कर लिया गया है और सभी सिस्टम को सुचारू रूप से काम करने में थोड़ा समय लगेगा। इस बीच कुछ हवाई सेवाओं ने काम करना शुरू कर दिया है। भारत में भी हवाई अड्डों पर कई एयरलाइंस को चेक इन और बोर्डिंग का काम कंप्यूटर के बजाय हाथ से करना पड़ा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार माइक्रोसॉफ्ट और उसके सहयोगियों के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया बल महत्वपूर्ण संस्थाओं और संगठनों के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि सभी प्रभावित कंपनियां अपने अपने सिस्टम को पटरी पर लाने के लिए मिलकर कार्य कर रही हैं। भारतीय वित्तीय और भुगतान प्रणालियां काफी हद तक प्रभावित नहीं हुई। रिजर्व बैंक ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट सेवाओं के बंद होने से मात्र 10 बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय निगम में मामूली व्यवधान आए, जिन्हें आसानी से हल कर लिया गया। आरबीआई ने कहा कि केवल कुछ ही बैंक क्राउड स्ट्राइक टूल का उपयोग कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप अजबे ने कहा कि व्यापक रूप से लोकप्रिय यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई सहित देश के भुगतान तंत्र पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कल भूटान के प्रधानमंत्री शेरिन तोबगे से भूटान की राजधानी थिम्पू में मुलाकात की। भारत ने भूटान के साथ घनिष्ठ मैत्री संबंधों और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की। श्री मिस्त्री भूटान के विदेश मंत्री डीएन धुंगेल से भी मिले। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मामलों और सभी क्षेत्रों में अनुकरणीय द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश सचिव कल 2 दिन की औपचारिक यात्रा पर थिम्पू पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्र सरकार विभिन्न पहलों से सरकारी तकनीकी शिक्षा क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रयास कर रही है। कल महाराष्ट्र में उन्होंने सरकारी तकनीकी इंजीनियरिंग संस्थानों को नए विचार के साथ आने और केंद्र सरकार को तुरंत प्रस्ताव भेजने को कहा है, ताकि वे उसके अनुसार बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकें। गृहमंत्री अमित शाह आज रांची में भाजपा की झारखंड इकाई की विस्तारित कार्यकारिणी समिति को संबोधित करेंगे और पार्टी के राज्य कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। वे राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह का ये पहला झारखंड दौरा है। भाजपा ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में महिलाओं के खिलाफ कथित अत्याचार की घटनाओं पर अपनी चुप्पी तोड़ने को भी कहा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
सुनिए, क्या आप इनकम टैक्स रिफंड क्लेम का इंतजार तो नहीं कर रहे?
सही और ईमानदारी से दी हुई जानकारी से फाइल की गई इनकम टैक्स रिटर्न्स के रिफंड क्लेम्स 1 महीने के भीतर ही जारी कर दिए जाते हैं।
इसके रेगुलर अपडेट्स के लिए आप ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके और अपने डैशबोर्ड पर आप अपने रिटर्न का प्रोसेसिंग स्टेटस और पेंडिंग एक्शंस चेक कर सकते हैं।
परंतु गलत TDS, झूठे खर्चे और कम आमदनी दिखाकर हाई रिस्क रिफंड्स क्लेम करने से रिफंड हो जाता है डिले, क्योंकि हर ई फाइल हुए रिटर्न की होती है गहन जांच और जानकारी में त्रुटियां पाए जाने पर CBC ITR से रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की सूचना दी जाती है। 10 दिन के भीतर दो रिमाइंडर्स मिलने के बावजूद रिवाइज्ड रिटर्न फाइल न करने पर रिटर्न प्रोसेसिंग में होती है देरी।
तो फिर देरी से बचने के लिए ईमानदारी से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दें जानकारी।
प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता।
सावधान, आपका डर ही साइबर अपराधियों की ताकत है। 2 घंटे में फोन बंद, शाम तक बिजली गुल, आपके पार्सल में अवैध सामान, सगे संबंधी खतरे में या बीमार या गिरफ्तार, नकली पुलिस CBI या कस्टम अधिकारी की धमकी, इन सब से बिल्कुल ना घबराएं। साइबर अपराधियों से सावधान रहें।
शिकार होने पर तुरंत कॉल करें 1930 पर या फिर शिकायत दर्ज कराएं www.cybercrime.gov.in पर। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त को।
गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बांग्लादेश ने कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन को रोकने में पुलिस के विफल रहने के बाद कर्फ्यू लगाने और सैन्य बलों की तैनाती की घोषणा की है। सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद देश में हिंसा भड़की हुई है। अब तक 105 लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों से ढाका में उच्चायोग द्वारा जारी सलाह का पालन करने और उच्चायोग के संपर्क में रहने को कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल दिल्ली में कहा कि बांग्लादेश में 8,500 छात्रों सहित लगभग 15,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर खुद स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और ढाका में उच्चायोग वहां की स्थिति की नियमित जानकारी दे रहा है।
We have issued a travel advisory for people to be in touch with the High Commission and for us to render any assistance that they may need. External Affairs Minister is himself monitoring the situation. The High Commission will be giving regular updates on the situation there.
इस बीच केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों से केन और बेतवा लिंक परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के काम में तेजी लाने और सभी लंबित परियोजना रिपोर्ट को तेजी से पूरा करने को कहा है। नदियों को जोड़ने की इस परियोजना में मध्य प्रदेश में केन नदी से पानी उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी तक पहुंचाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के जरिए बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। वहीं बिहार सरकार ने अपनी पहली फिल्म प्रचार नीति को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य फिल्म निर्माताओं और सिनेमा प्रेमियों को पूर्ण संस्थागत सहयोग प्रदान करना है। नीति के अनुसार बिहार की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए तक का वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
बिहार की नई फिल्म प्रोत्साहन नीति में राज्य की कला, संस्कृति, भाषा और बोलियों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया है। जो फिल्म निर्माता मैथिली, मगही, भोजपुरी, बज्जिका और अंगिका में फिल्म बनाएंगे उन्हें फिल्म निर्माण के लिए अनुदान दिया जाएगा। फिल्म की शूटिंग, निर्माण की अनुमति और अन्य प्रक्रियाओं को बाधा रहित बनाने के लिए राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर पर कमेटियां बनाने का प्रस्ताव है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा आज जबलपुर में उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे।
क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन में प्रमुख उद्योगपतियों, विभिन्न उद्योग संघों के प्रतिनिधियों और विदेशी मेहमानों सहित उद्योग जगत के 3500 से अधिक प्रमुख लोग शामिल होंगे। सम्मेलन में ताइवान, मलेशिया, ब्रिटेन, फिजी, जापान और इंडोनेशिया का प्रतिनिधि मंडल भी शामिल होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 60 से अधिक इकाइयों का वर्चुअली उद्घाटन कर उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन में 5 क्षेत्रीय सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन में 300 से अधिक क्रेता विक्रेता बैठक और 1-to-1 चर्चाएं भी होंगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
देश में खरीफ फसलों की बुआई पिछले वर्ष 680 लाख हेक्टेयर के मुकाबले अब तक 704 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि चावल की बुआई 166 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है, जो पिछले साल से करीब 11 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। 85 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में दलहन की खेती की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15 लाख हेक्टेयर अधिक है। सरकार ने अनाज, दालों और तिलहन में नमी के स्तर को मापने वाले नमी मीटर के लिए मसौदा नियमों पर सभी हितधारकों के साथ चर्चा की। नमी मीटर का उपयोग विशेष रूप से कृषि उत्पादों, अनाज और तिलहन में नमी की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। इस उपकरण से नमी के बारे में सटीक आंकड़े मिलते हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और कर्नाटक के दक्षिणी भाग में अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
मौसम विभाग ने बताया कि आज केरल, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तथा मध्य महाराष्ट्र एवं तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अगले चार दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा की स्थिति बनी रहेगी। वहीं भारी वर्षा की स्थिति आज झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के साथ साथ अगले चार दिनों के बीच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बनी रहेगी। मौसम विभाग ने अगले तीन से चार दिनों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से आदर्श।
वहीं गुजरात में सौराष्ट्र के तटीय जिलों में पिछले दो दिनों से जारी भारी बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। देवभूमि, द्वारका और पोरबंदर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के 9 जिलों में बहुत मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
राज्य में बाढ़ से करीब 57 गांव प्रभावित हुए हैं। राज्य राहत आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने बताया कि बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 10-10 टीमें तैनात की गई है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के पानी में फंसे 45 लोगों को बचाया गया है, जबकि निचले इलाकों में रहने वाले करीब 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बारिश के कारण 9 राज्य राजमार्गों सहित 200 से अधिक सड़कें प्रभावित हुई है। 350 से अधिक गांव में बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी, जिसमें से अब तक 300 गांव में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। राज्य के 13 बांधों को अभी भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति प्रताप सिंह।
श्रीलंका में महिला एशिया कप टी20 क्रिकेट में वर्तमान चैंपियन भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। 109 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम ने 35 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की। पाकिस्तान की पूरी टीम 20वें ओवर में 108 रन पर सिमट गई थी। शेफाली वर्मा ने 40 और स्मृति मंधाना ने 45 रन बनाए। दीप्ति शर्मा ने सिर्फ 20 रन देकर 3 विकेट लिए। उधर स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज स्पेन के राफेल नडाल का सामना क्रोएशिया के दूजो एडजू कोविक के साथ होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के थियागो ऑगस्टन तिरांते का सामना पुर्तगाल के नूनो बार्गेस से होगा।
डाक विभाग ने लोगों को समय पर राखी पहुंचाने के लिए 31 जुलाई तक राखी भेजने की सलाह दी है। विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय मेलिंग की कठिनाइयों से निपटने और देरी तथा सीमा शुल्क संबंधी समस्याओं की संभावना को कम करने के लिए ये सलाह दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं।
वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन।
और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
धन्यवाद फरत। टेक्नोलॉजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में कल हुई गड़बड़ी से दुनिया हैंग होने की खबर सभी अखबारों में आज प्रमुखता से छाई हुई है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, ब्लू स्क्रीन से ठहरी दुनिया, कई स्टॉक एक्सचेंज और सुपर मार्केट का कामकाज ठप। क्राइम ब्रांच द्वारा अवैध किडनी प्रत्यारोपण का भंडाफोड़ करने की खबर हिंदुस्तान ने प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, 6 राज्यों में फैले किडनी रैकेट का भंडाफोड़, 15 गिरफ्तार, 35 लाख की ठगी की शिकायत के बाद मामले का खुलासा। वहीं अमर उजाला ने विदेशी मेहमानों के लिए लुटियन दिल्ली के सजने की खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, विश्व धरोहर समिति की 11 दिवसीय बैठक, कल से 142 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 3 लाख से बढ़कर 38 लाख हुई, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, पड़ोसी देश में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह बना हिंदू समुदाय। रंग रूप के बजाय बेटी के कौशल की प्रशंसा करें, सुंदरता का सही अर्थ बताएं ताकि फोकस बेहतर व्यक्तित्व पर रहे। दैनिक भास्कर ने खास शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है।
धन्यवाद सैफिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी के बाद हवाई और स्वास्थ्य सहित वैश्विक सेवाएं धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं। भारतीय वित्तीय और भुगतान प्रणालियां काफी हद तक इससे अप्रभावित रहीं। भारत ने भूटान के साथ घनिष्ठ मित्रता संबंधों और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी झड़पों के बाद कर्फ्यू लगाया गया और सैन्य बलों की तैनाती की गई। मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा हुई। श्रीलंका में महिला एशिया कप टी20 क्रिकेट में भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। और स्वीडिश ओपन टेनिस में स्पेन के राफेल नडाल आज सिंगल सेमीफाइनल में क्रोएशियाई डुए अदुकोविच से खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।